माधव कुंज बिहार
हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद।
Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Vrindavan Sri Radha Krishna Gopinath Shyamakunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Vrindavan Dham Ki Navadip Mayapur Dham Ki Jagannath Puri Ki Gangamai Jamunamai Ki Bhakti Devi Tulsi Devi Ki Kali Rupavan Harinam Sankirtan Ki Gaur Premanande. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories, all glories, all glories to Sri Guru and Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate
Vasudevaya. Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavat se hum padhenge. Srimad Bhagavat skanda 8va adhyay 3ra shlok 26 shlok 25 Gajendra ki samarpan stuti. Gajendra bhagwan se prarthna kar rahe unke uddhar ke baad Jiji Vishena Hamihamuyaki Mantar Bahishcha Avrutyo Bhayonya Ichamikale Nanayasa Diplava Tasyat Maloka Varnasya Moksham Anuadar Tatpareshila Prabhupadwara Ghadiyal ke Akraman se Mukt kiye jane ke baad Main aur aage Jeevit Rehna Nahi Chahata ऐसे हाथी के शरीर से क्या लाभ जो भीतर तथा बाहर से अज्ञान से आच्छादित हो मैं तो अज्ञान के आवरण से केवल नित्य मोक्ष की कामना करता हूं यह आवरण काल के प्रभाव से विनष्ट नहीं होता बहुत ही महत्वपूर्ण यहां बता रहे गजेंद्र वो कहते कि वो अज्ञान का जो आवरण है उससे नित्य मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं और कहते कि यह आवरण काल के प्रभाव से विनष्ट नहीं होता तात्पर्य इस भौतिक जगत में प्रत्येक जीव अज्ञान के अंधकार से आच्छादित है इसीलिए वेदों का आदेश है कि गुरु के माध्यम से भगवान तक पहुंचा जाए क्योंकि गौतमीय तंत्र में गुरु का वर्णन तथा उनकी स्तुति इस प्रकार की गई है ओम ज्ञानति निरन्नस्य ज्ञानांजना शलाकय चक्षुर्मिलितमेन तस्मै श्री गुरवे नमः मैं अपने गुरु को सादर नमस्कार करता हूं जिन्होंने ज्ञान के दीपक से मेरी उन आंखों को खोल दिया जो अज्ञान के अंधकार से अंधी हो चुकी थी भले ही मनुष्य इस जगत में जीवन संघर्ष क्यों न करे किंतु उसके लिए सदैव जीवित रह पाना असंभव है अतएव मनुष्य को समझना चाहिए कि यह जीवन संघर्ष अज्ञान के कारण है अन्यथा प्रत्येक जीव परमेश्वर का नित्य अंश है किसी को हाथी या भारतीय या अमेरिकी पुरुष के रूप में जीवित रहने की कोई आवश्यकता नहीं है मनुष्य को जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्ति प्राप्त करने की एकमात्र कामना करनी चाहिए अज्ञान के कारण प्रकृति द्वारा प्रदत्त प्रत्येक जीवन को हम सुखी तथा आनंददायक मानते हैं किंतु प्रत्येक जीवन में ब्रह्मा से लेकर एक शूद्र चींटी तक कोई भी वास्तव में सुखी नहीं है यद्यपि हम सुखपूर्वक रहने के लिए अनेक योजनाएं बनाते हैं किंतु इस जगत में कोई सुखी नहीं हो सकता भले ही हम इस जीवन में या उस जीवन में स्थायी आवास बनाने का प्रयत्न क्यों न करें ओम ज्ञानति निरन्नस्य ज्ञानांजना शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः श्री चैतन्य मनोविष्टं तापिकं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वा कदा नतिकम्
वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं हरिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रसादाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी अशक्त देशतारिणे वंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधोभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासवि गौर भक्तवृंद कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। जिजी विषेनाहमिहाय माकिम् अन्तर्वाहिश्च आमृतयोभयोन्याम् इच्छामि कालेन नयस्य विप्लवा तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम्। घड़ियाल के आक्रमण से मुक्त किए जाने के बाद मैं और आगे जीवित रहना नहीं चाहता। ऐसे हाथी के शरीर से क्या लाभ जो भीतर तथा बाहर से अज्ञान से आच्छादित हो। मैं तो अज्ञान के आवरण से केवल नित्य मोक्ष की कामना करता हूँ। ये आवरण काल के प्रभाव से विनष्ट नहीं होता। तो यहाँ गजेंद्र भगवान से रक्षित होने के बाद, उनकी रक्षा हो गई है तो भगवान से प्रार्थना कर रहे थे अपनी रक्षा के लिए, परंतु किस प्रकार की रक्षा यहां हमें समझ में आता है। बचपन में कथा ऐसी सुनी है कि वो हाथी फंस गया था घड़ियाल के मुख में और उसका जीवन नष्ट हो रहा था, और इसलिए फूलों ने अर्पण किया भगवान को। भगवान आए और उसको अपने चक्र से मगरमच्छ से उसको मार दिया और उसको बचाया। परंतु गजेंद्र अभी भी नहीं समझते कि वो बच गए। वो ये नहीं समझ रहे कि मैं बचा हुआ हूं, वो समझ रहे कि इस हाथी के शरीर से क्या लाभ है। अंदर से भी अज्ञान और बाहर से भी अज्ञान। साइज बड़ा है लेकिन उतना ही बड़ा अज्ञान है। जब तक इस समय बचता नहीं, जब तक ये अज्ञान दूर नहीं होगा तब तक कोई लाभ नहीं। यानी कि गजेंद्र भगवान के संपर्क में आने से वो जान गया असली दुख क्या है, असली खतरा क्या है। उस खतरे से बचना चाहते हैं। असली खतरा क्या है कि जहां अज्ञान है, और हम देखते हैं भौतिक जगत में हर एक वस्तु काल के प्रभाव से विनष्ट हो जाता है, महत्वपूर्ण है। काल के प्रभाव से हिमालय पर्वत भी नाश हो जाएगा, गंगा सूख जाएगी। गंगा को तो अभी सुखा रहे लोग, गंगा में हम लोग हाल ही में ऋषिकेश में थे, लोग कहते हैं, देखा भी है गंगा का जो पानी का जो भाग था इतना बड़ा था, अभी कम होते जा रहा है। बड़े बड़े जो इस पृथ्वी को अध्ययन करते हैं वो कहते हैं कि गंगा 50 साल में सूख जाएगी, और गंगा सूखेगी तो 900 किलोमीटर का जो बेल्ट है गंगा जहां बहती है 900 किलोमीटर, उससे भूखे मरेंगे। क्यों? गंगा कितने लोगों को जीवित रखती है, एक तो भौतिक दृष्टि से
और आध्यात्मिक दृष्टि से, वो भी सूख जाएगी। अगर सत्ययुग में किसी ने कहा होता कि गंगा सूखेगी, लोग बोलेंगे तो पागल हो गया, गंगा कैसे सूखेगी। लेकिन काल का प्रभाव ऐसा है सब सूख जाता है, कितना भी आप अपने स्किन को सॉफ्ट रखने के लिए एंटी ड्राई क्रीम लगाओ, लेकिन ये जीव ऐसा है कि काल के प्रभाव से सूख जाएगा। एक ही चीज नहीं सूखता, वो क्या है? अज्ञान। अज्ञान का आवरण को काल कुछ नहीं कर सकता, बल्कि अज्ञान केवल बढ़ता जाता है। हमारे कर्मों के अनुसार जो हम जो इम्प्रेशन है उसको ले जाते हैं, उसको केवल रहने से। कभी कभी लोग कहते हैं जब भी समय आ जाएगा आ जाएंगे, समय आएगा और अज्ञान बढ़ जाएगा। ऐसे समय चला जाएगा अज्ञान बढ़ता जाएगा। इसलिए यहां गजेंद्र चिंतित होकर भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे किससे मोक्ष चाहिए? इस अज्ञान से। और अज्ञानी कारण है, प्रभुपाद जी भक्ति रसामृत सिंधु इस ग्रंथ में लिखते हैं, अज्ञानी सब दुखों का मूल है। अज्ञान के कारण जीव पाप कर लेता है, पाप क्या है इसकी जानकारी नहीं होती है, लेकिन पाप कर लेता है। मैं रामायण पढ़ रहा था, जब भरत भगवान राम के पास आते हैं और काफी प्रश्न भगवान राम भरत से पूछते हैं, अलग अलग प्रश्न करते हैं भरत से, क्योंकि भरत दुखी है। राम को अभी तक जानकारी नहीं थी कि पिताश्री गुजर गए, तो अलग अलग प्रश्न करते हैं, क्या आपने ठीक से राज्य नहीं किया, आपने सही मंत्रियों को अपने साथ नहीं रखा इसलिए आप दुखी हो, और एक प्रश्न करते हैं क्या आपको गलत समय में नींद आता है, ये भी पाप है। देखो राम भरत से पूछते हैं आपको समय छोड़कर गलत समय पे नींद आता है, ये विद्यार्थी जीवन है। विद्यार्थी जीवन क्या है? रात को 3 बजे सो और 12 बजे उठो और सीधा क्लास पे चले जाओ। तो प्रश्न करना भगवान रामचंद्र जी भरत को, ये एक मुख्य विषय था प्रश्न करना कि आपको गलत समय में नींद आता है। मैं आश्चर्यचकित हो गया, मैं सो के उठा था उसी समय, क्योंकि रात को कुछ समस्याओं के कारण नींद नहीं है। तो ये भी हम देखते हैं रामायण में कहा गया है, ये ठीक नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे है, इसको मैंने कैसे करे, ये सब बकवास है। नहीं कि वैदिक संस्कृति हर एक कार्य के लिए हर एक पग पर लोगों को ज्ञान था, कैसे रहना है, कैसे व्यवहार करना है, किस प्रकार से जीवन चलाना है, किस प्रकार से लोगों से बात करना है, ये सब कुछ जो फिलॉसफी जो तत्व ज्ञान था इसको लोग पालन करते थे। इसलिए वैदिक धर्म का पालन करना क्यों लोग दूसरे जो अलग अलग जो धर्म का जो नाम लेकर असत्य है, नास्तिकवाद है, उसको क्यों ग्रहण करते हैं? क्योंकि उसमें जितना आपका ज्ञान बढ़ेगा और आप एक शो करोगे धार्मिक बनने का, फिर आप धार्मिक बन गए, उसमें कोई नियम नहीं है। जितना कम नियम है उतना लोग उस धर्म के पास चले जाते आसान है करने के लिए। लेकिन वैदिक संस्कृति जो अपने आप को सनातन धर्मी कहता है, बहुत कठिन है सनातन धर्म का पालन करना, लेकिन लाभ कितना है, बहुत ही बड़ा लाभ है। और सबसे बड़ा लाभ है कि अज्ञान से मुक्त हो जाते हैं, और जैसे अज्ञान चला जाता है, प्रभुपाद जी लिखते हैं अज्ञान ही मूल कारण है पाप का, और एक पाप का चक्र हमेशा के लिए चालू रहता है। इसे हमने काफी बार एक कहानी सुना है, अनिवार्य प्रतियात्रा में जयदेव महाराज प्रश्नोत्तर का कार्यक्रम कर रहे थे और दो बहुत मोटे स्त्री आ गई, दूर से देख रहे थे क्या चल रहा है। बहुत सुंदर कार्यक्रम होता है क्वेश्चन आंसर का रथ यात्रा के समय, काफी लोग आकर प्रश्न करते हैं, निवारकर प्रश्नों का भिड़ी मार करते हैं, बहुत अपने आप को होशियार समझते आकर ऐसे विचित्र प्रश्न करते रहे। तो जयदेव महाराज हर समय प्रश्नोत्तर के बूथ में बैठकर प्रश्नों का उत्तर देते रहते। तो मोटे स्त्री आ रही थी उधर, वो दूर से देख रही थी, क्वेश्चन आंसर बहुत उधर ही आ रही थी। तो मैंने क्या किया, जगत महाराज किसी विद्यार्थी के साथ चर्चा कर रहे थे, विद्यार्थी कह रहे थे इंद्रिय भोगी जीवन का उद्देश्य है। तो महाराज ने कहा जब आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो, तो आत्मा के लिए क्या है, शरीर तो मृत है, इंद्रियों के जो वस्तु है, इंद्रियों के विषय है, वो भी मृत है, डेड मैटर, एंजॉइंग डेड मैटर, हाउ इज इट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। ऐसी चर्चा चल रही थी, वो स्त्रिया निकट निकट आ रहे थे, तो उन्होंने और कुछ कहा विद्यार्थीगण। तो जयदेव महाराज जोर से बेंच के ऊपर, टेबल के ऊपर पॉइंट को क्लियर करने हेतु वो कह रहे थे वी आर नॉट दिस बॉडीज, वी आर स्पिरिट सोल। ये दो स्त्रिया जो मोटे थे उन्होंने सुन लिया कि वी आर नॉट दिस बॉडीज, और उन्होंने कहा वाटर रिलीफ। देखो एक शब्द जो अपने आप को शरीर समझ रहे थे इसलिए बहुत दुखी थे। कौन मोटे शरीर को पसंद करता है, खुद पसंद नहीं करता, बस दूसरा तो छोड़ दो। तो उनको उससे क्या हुआ, केवल उसको सुनकर उनको लगा रिलीफ, व्हाट अ रिलीफ, कितना सुखद शब्दों को सुनने मिल रहा है। जो अपने आप को सुंदर समझता है उसके लिए बड़ी दुख की बात है कि मैं शरीर नहीं हूं, मिस यूनिवर्स को कह दे यार नॉट इज बॉडी, मतलब मेरा अपमान कर रहा हो, कोर्ट में चले जाते हैं। तो यहां एक गीता का शब्द जो अज्ञान को दूर करेगा वो कितना शक्तिशाली। इसलिए यहां गजेंद्र भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि जब तक हमें डेस्टिनेशन की जानकारी नहीं होती, गंतव्य की जानकारी नहीं होती, अगर उस गंतव्य को अब उससे वहां से जा भी रहे हो तो गंतव्य की जानकारी न होने के कारण उसका अनुभव करने पर भी एक भय रहता है, एक डरावना रहता है। परंतु जो समझ लेता है ठीक से उसको कोई डर नहीं रहता। जैसे राधानंद महाराज दिल्ली में एक कहानी सुना रहे थे, जब वो भारत के भ्रमण के लिए आए थे 1970 में, अलग जगह में जा रहे थे, अलग अलग जगह, नेपाल में गए थे, वहां बोधनाथ का मंदिर है, बुद्ध नीलकंठ पहाड़ी पर है, बहुत ऊंचे पहाड़ी पर है, वहां से पूरा आप नेपाल देख सकते हो, कहां हमारे माधव का तो पूरा नेपाल देख सकते हो, बहुत सुंदर दृश्य है। हम लोग पिछले साल वहां गए थे, और वहां पहले केवल राइस फील्ड था, राइस फील्ड राइस फील्ड। तो एक बार महाराज जी बता रहे थे बैठ करो, ध्यान कर रहे थे, देख रहे थे पूरे वहां का हिमालय वैलीज, वो देख रहे थे सुंदर दृश्य। तो उनके सामने से एक जर्मन, जर्मन लोग बड़े शक्तिशाली होते हैं, तो एक जर्मन जा रहा था, उसके हाथ में एक ग्रोसरी थी, फल था, कुछ सब्जी वगैरह लेके जा रहा था, और ऐसा बहुत बॉडी बिल्डर था, तो नेचुरली बॉडी बिल्डर होने के कारण स्लीवलेस टी शर्ट पहना था, दर्शन दे रहा था सबको फ्री दर्शन। तो जा रहा था तो उस समय उसके हाथ में इतना सारा थैली है, तो वहां बंदर आ गए, काफी सारे बंदर। तो जब बंदर आ गए तो उसने देखा सब बंदर उसके पास ही आ रहे हैं, महाराज देख रहे कि बंदर उसके पास आ रहा है। उसने क्या किया, वो बंदर को दूर करने के लिए प्रयास किया, लेकिन वो उसको अपना दांत दिखा रहे थे, अपने पंजों को दिखा रहे थे, आवाज कर रहे थे, फिर वो बंदर समझ गए कि डर गया है, इतना शक्तिशाली जर्मन वो डर गया, समझ गए। महाराज बोल रहे थे कि वो चार बंदर आ गए, आसानी से उसके हाथ से ग्रोसरी उठाया और छोड़ दिया, वो भागने लगा उधर से, भाग गया उधर से, क्योंकि बंदर मुझे आक्रमण करेंगे, और वहां बैठ के आराम से केला खा रहे थे बंदर। तो उसी के समय एक नेपाली लड़का आ गया, जो वो जो जर्मन का जो जो हाथ था उतना उसका पूरा शरीर था, दैट वॉज हिज बॉडी, उतना शरीर का लड़का, छोटी सी लकड़ी थी उसके हाथ में, वो आया ऐसा घुमाता हुआ सीधा बंदरों के बीच में गया, और अपना लकड़ी घुमाया, सबके सब बंदर भाग गए और उसने दोनों थैली उठाया, खुद बैठ गया खाने के लिए। फिर वो महाराज को देना चाहता था, महाराज कहना नहीं, मैं तेरा इतना निर्भय अभी तक नहीं बना हूं, तेरे पास वो ज्ञान आ गया कैसे इन बंदरों के साथ डील करना चाहिए। इसलिए हम देखते हैं कि जहां निर्भयता है ज्ञान है, ये बंदर मुझे कुछ नहीं करेंगे, उसको पास उसके पास पूरा विश्वास था। इसलिए कुछ शक्ति न होने पर भी जो जर्मन बॉडी बिल्डर कुछ नहीं कर पाया, वो आराम से कुचल सकता था बंदरों को, लेकिन वो कुचल नहीं पाया। और ये लड़का कुछ नहीं कर सकता था बंदरों को, लेकिन वो विश्वास था। ज्ञान उसी प्रकार से, ज्ञान क्या है, ज्ञान का जब आविष्कार है, ज्ञान का प्रवेश हो जाता है, तो इस भौतिक जगत में डील करना आसान बन जाता है। आप हर चीज को ज्ञान के दृष्टिकोण से देखते हो। इसलिए भगवद गीता में भगवान कहते हैं 15वें अध्याय में, एक ज्ञान का अस्त्र लेकर हम ये जो अज्ञान का जो रूट है उसको काट देना चाहिए। और ज्ञान इतना शक्तिशाली है, हमारे सारा अज्ञान को दूर कर देता है। जैसे हम देखते हैं महाभारत रामायण में भी, जिसमें कई कई अज्ञान के कारण उसको मंथरा ने क्या किया, उसको बिगाड़ दिया। उसका राम के प्रति जो स्वाभाविक स्नेह था उसको बिगाड़ दिया, लेकिन उसको फाउंडेशन नहीं था। अगर कई चीज को फाउंडेशन नहीं हो, हम मंदिर में आते हैं, जप करते हैं, हम दो दिन ही चर्चा कर रहे हैं, लेकिन वो जप करने में फाउंडेशन नहीं हो, किसके लिए कर रहे है? मेरे मित्र को प्रसन्न करने के लिए करना पड़ रहा है, कुछ इच्छाओं से भगवान के पास आ रहे हैं, लेकिन नॉलेज ज्ञान नहीं हो तो क्या होगा। अगर कोई कुमंत्रण करेगा, मंथरा आने की क्या, मंथन इस शब्द से मंत्रा आया हुआ है, जो हमारे मन को मंथन कराकर हमारा जो स्नेह है भगवान के प्रति उसको नष्ट कर देना। देखिए, अगर वहां ब्रेन वॉश करने के लिए मंथरा जैसी स्त्री थी, कई कई इतना प्रेम था भगवान के प्रति, और जैसे आई बताने के लिए, देखो ऐसा हो रहा है, बोला अच्छा बात है, आपके लिए मैं भेंट देती हूँ, आपने इतना अच्छा समाचार लेकर आई, राम का राज्याभिषेक हो रहा है, ये उसकी भावना थी। लेकिन कुमंत्रण के बार बार सुनते 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 वही राम के प्रति जो प्रेम था वो द्वेष में परिवर्तित हो गया। अभी तो प्रश्न करना है, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्या भगवान का अस्तित्व है क्या, खास करके विद्यार्थियों में एक फैशन है प्रश्न करना। जब तक ऐसा प्रश्न नहीं करोगे देन यू आर नॉट प्रोग्रेसिव। मैं आधुनिक नहीं हूं, ये क्या भगवान को आसानी से स्वीकार करना, ये क्या है, ये तो रूढ़ीवाद है, ये अंधश्रद्धा है, मैंने देखा नहीं भगवान को, ये क्या है, ये बहुत सारे मंत्रा ने बिगाड़ के रखा हुआ है, इसलिए ऐसा प्रश्न आता है। स्वाभाविक प्रेम है भगवान के प्रति, लेकिन मंत्रा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, मंत्रा मित्र है, सब लोग ने क्या किया है, बुद्धि बिगाड़ के रखा हुआ है। इंद्रिय भोगी जीवन का उद्देश्य है, अरे धर्म और अच्छे कर्म इसके क्या है, उसको छोड़ दो, एंजॉय, जस्ट डू इट, जस्ट डू इट, ये जो भावना है इसके कारण दोष आ गए। और इन दोषों के कारण जब प्रश्न आता है क्या भगवान का अस्तित्व है, ये ज्ञान का लक्षण नहीं है, ये विकृत भावना का लक्षण है। इसलिए कैके ने कहा, उन्होंने देखा, अरे ये सही बात है, ये सही कहेगी, तो इसलिए उसको इतना भगवान के प्रति द्वेष हो गया, वो कहते हैं राम को वनवास भेज दो 14 साल के लिए और मेरा पुत्र राजा बनना चाहिए। और 14 साल के लिए क्यों, ऐसा शास्त्र में नियम है कि अगर कोई 14 साल के लिए चला जाएगा, जब वापस आ जाता है वो फिर से राज्य स्वीकार नहीं कर पाएगा, उसको कोई स्वीकार नहीं करेंगे। इतनी उसकी बुद्धि बिगड़ गई, वो राम को एक दृष्टि से वो जानना चाहते थे कि वो मर जाए, ताकि मेरा पुत्र को कोई प्रतिस्पर्धी नहीं रहेगा। देखिए कैसे परिवर्तन हो गया। और उसके विरुद्ध सुमंत्रा सुमंत्रा ने की जो ऑस्पिशियस मंथन करते हमारे मन को अच्छे शब्दों से वही मार्ग पर लाना चाहता और सुमंत्रा कौन था सूत था लेकिन फिर भी विश्वास प्रेम के कारण ज्ञान के कारण सही समय पर सही मार्गदर्शन किया करते थे सुमंत्रा ने ही राजा दशरथ को कहा था कि आप वो जो क्या उनका नाम शांता के पति ऋषि का नाम क्या था जो आकर ऋष्यशृंग उनका पूरा पूर्वजों की कहानी सुना बोले उनसे यज्ञ करो उनसे यज्ञ करे थे आपको पुत्र प्राप्त होगा सुमंत्रा के पास सही समय पर सही ज्ञान देने का एक कला थी यानी कि राइट समय पर कौन सा ज्ञान उपयोग करना चाहिए ये भक्तों में होना चाहिए अलग अलग वातावरण को देकर अब गीता का कौन सा अध्याय मेरे जीवन में मैं इसको उपयोग कर सकता हूं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और सुमंत्र उसका एक प्रतिनिधित्व करते हैं और जब देख रहे कि कई कई सुन नहीं रही है वो अपने पति को मारने के लिए उद्युक्त है तब सुमंत्रा कहते हैं तू तो कैसी स्त्री है इतनी भयानक और कहते क्या करेगी तेरे पूर्वज भी ऐसे ही तेरी माँ भी ऐसे ही थी तो माँ के गुण आप लेकर आई हो देखो याद दिलाते हैं जो दशरथ महाराज को भी जानकारी नहीं थी आचार्यगण कहते हैं कि दशरथ महाराज भी नहीं जानते थे लेकिन सुमंत्रा के पास डिटेल इन्फॉर्मेशन था और सूत होने पर भी रानी को डांटना कितना धैर्य है वो इतना भर्त्सना करते हैं कई कई की और कहने लगते कि एक काल में आपके पिताश्री उनको ऐसा एक ऋषि ने वरदान दिया था वरदान क्या था वे पक्षियों की भाषा को जान सकते थे ये वरदान हो गया लेकिन कंडीशन भी था भौतिक वस्तु जब मिलती है उसके साथ में कुछ न कुछ त्याग लगा रहता है जो हमारे लिए वो डेंजरस होता है वरदान तो है पक्षियों की भाषा को जान जाओगे लेकिन जो पक्षी बोलते अगर दूसरों को समझाओगे कि पक्षी ये बात कर रहा है तेरी मृत्यु हो जाएगी ये क्या वरदान है देखो आप जानते हो उनकी भाषाओं को और दूसरों को बोल नहीं सकते वो सबसे कठिन है आदिमों की भाषाओं को एक सेकंड के अंदर पूरे दुनिया में फैल जाता है विदाउट एनी कम्युनिकेशन किसी के साथ में कुछ हो गया तो ज्यादा समय नहीं लगता हमारे पास फास्ट कम्युनिकेशन है हम बोलने लगते हैं लेकिन यहाँ पक्षियों की भाषाओं को जानते हैं और आपके पास ही फ्रेश न्यूज है लेकिन दूसरों को बताने से क्या होगा आपकी मृत्यु हो जाएगी ये वरदान ऐसा ही भौतिक वरदान ऐसा ही होता है जो कुछ भी मिलेगा आपको आपने मर्सिडीज कार खरीद लिया तो फिर से दाऊद का फोन आ गया आपको कार आ गया लेकिन उसका परिणाम क्या है उसको देखना उसको संभालना कितने लोग उसके प्रति द्वेष करेंगे और कोई सही में द्वेष उसका द्वेष अनुशीलन करेगा तो अगले सुबह दिन जब आप उठ के बाहर आओगे एक तो रात को नींद नहीं आएगा पता नहीं कार को क्या होगा कोई स्क्रैच करेगा कोई पंक्चर करेगा कोई पत्थर फेंकेगा और अगले दिन आकर आप देखते हो सामने ही जहां उसका ट्रेडमार्क होता है उधर ही इतना बड़ा डेंट है तो आपको आता हार्ट अटैक हो जाता है ये क्या हो गया ये बेनिडिक्शन ऐसे भौतिक बेनिडिक्शन तो राजा सोए हुए थे कहीं कहीं के पिताजी और अचानक उन्होंने एक पक्षी को देखा रामायण में वो पक्षी अपने सहचरी से बात कर रहे थे उनके बातों को सुनकर उनको विचित्र लगा जोर जोर से हंसने लगे और ये देखकर कई कई की जो माता थी उनको संशय हो गया दूसरों के बारे में कोई उनकी है उसको सोचकर वो हंस रहे देखो ये उनका स्पेक्युलेशन था तो कहने लगी क्यों हंस रहे आप बोला ऐसे ही हंस रहा हूं ऐसे कोई हंसता है क्या उन्होंने कहा वो पक्षियों को देखकर मुझे ऋषि ने ऐसा वरदान दिया है तो उनके विचित्र बातों को सुनकर मैं हंस रहा हूं तो मुझे बताओ क्या बात कर रहे उन्होंने कहा नहीं अगर मैं बताऊं तो क्या होगा मेरी मृत्यु हो जाएगी
वो आगे कहते मरो लेकिन मुझे बताओ। रामायण में लिखा ऐसा। देखिए जब बुद्धि बिगड़ जाती है समझते नहीं कि ये मेरे पति है, ये मरेंगे तो मुझे भी मरना पड़ेगा। वो कहते नहीं आप मरो लेकिन मुझे बताओ। ये सुमंत्रा कई कई को समझा रहे, मां जैसे ही बन रही तू अपने पति को मार रही। तो राजा बोला ये क्या है, मैं मर जाऊंगा। वो मुझे नहीं, मुझे उनके वचनों को सुनना है। तो उनके एक मंत्री थे, वो भी सुमंत्रा के साथ समान ही थे। उन्होंने राजा को कहा अरे इसको छोड़ दो, इसको त्याग दो, अगर नहीं त्यागोगे तो आपकी मृत्यु हो जाएगी, राज्य दरबार कौन करेगा। वैसे डांटने से कि त्यागने का, उनको डराने से फिर वो ठीक होगी। तो इतना सुनने पर भी कई कई का जो बुद्धि है वो ठीक नहीं हुआ। लेकिन कहने का उद्देश्य है सुमंत्रा के पास ऐसे सुवचन पे बोलने के लिए, कन्विंस करने के लिए। लेकिन मंत्रा का इतने शब्द सुनकर वो पत्थर के समान स्ट्रांग बन गया था, उससे वो विचलित नहीं हो पाई। केवल भरत आने के बाद ही भरत की भावनाओं को देखकर कितना उसके अंदर राम के प्रति श्रद्धा है, राम का ध्यान है। भरत कहते हैं शास्त्र में कहा है कि भरत माता को डांटते हैं, बोले तू कितनी पागल है, तुझे लगता है कि मैं राजा बनूंगा राम को छोड़कर, ऐसे कभी हुआ है। एक आचार्य कहते कि कैकेयी को कहते हैं तू तो किस देश से आई हो जहां मोर बहुत होते हैं, बार बार सुनी हो मोरों की आवाज, देखी हो अब मोर को। वो कहने लगते हैं कभी देखा है, मोर के बहुत सारे बच्चे होते हैं, जो मोरी तो सबसे बड़ा बच्चा होता है उसको विशेष रूप से उसके सिर पर क्राउन आ जाता है, आपने देखा होगा वहां एक मुकुट आ जाता है बड़े बच्चे को और बाकियों को नहीं आता। ये क्या, ये राजा है बाकी सब उसके प्रजा है। मतलब उस देश से आई हो लेकिन फिर भी समझते नहीं, मोर जानते हैं कि केवल बड़ा ही राजा बनता। लेकिन कुमंत्रण के कारण समझ में नहीं आ रहा था। तो इसलिए हम देखते जो अज्ञान है उसको नाश करने के लिए हमेशा प्रयास करना चाहिए, उसको बढ़ाने के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। और जब अज्ञान बढ़ जाता है फिर उस अज्ञान से जो पाप होता है उस पाप को हम सही समझकर जीवन निर्वाह करने लगते हैं। इसलिए गीता में भगवान कहते हैं जो अमृत है उसको मृत्यु मानना, जो पॉइजन है जहर है उसको अमृत मानना और अमृत को जहर मानना। हमने जो हम लोग जब फूड फॉर लाइफ करते थे, अभी तो बहुत बड़े मात्रा में होता है, पहले हम लोग चर्च गेट में खड़े होते थे, कीर्तन किया करते थे और प्रसाद वितरण करते थे, घी में बनाया हुआ हलवा। अभी सोचो घी में बनाया हुआ हलवा, और जब भी कुकिंग होता है तब जो भी जो रसोई है वो स्नान करके नए वस्त्र धारण करके हाइजीनिक स्थिति में भोजन बनाया जाता है भगवान के लिए। जो इस्कॉन के जो किचन है 99% सब जगह में साफ होते हैं, क्लीन। कई मंदिरों में व्यवस्थापन ठीक नहीं हुआ, हो सकता है कि वहां थोड़ा गंदगी होती होगी, लेकिन 99% पूरा साफ रहेगा। क्यों, भगवान के लिए बना रहे और भक्त लोग भी दीक्षित है इसलिए स्वाभाविक है कि वो दिन में 3-4 बार स्नान करते ही है। तो ऐसे वातावरण में भोजन बना रहे, भगवान के लिए भोग बना रहे, हरि कीर्तन सुन रहे, वो हलवा अच्छे डब्बे में डालकर ले जा रहे चर्च गेट में और वितरण कर रहे। हमने देखा कितने बार, यहां हम लोग खड़े ए रस्ते पर, वो सामने वाले रस्ते में भेल और वड़ा पाव बेच रहे लोग थोड़ी दूरी पर। जब हलवा देने के लिए जाओ, ये जो टाई लगाकर जो गड़पास लगाकर घूमते रहते हैं वो निकट नहीं आते थे। एक तो फ्री में दे रहे हैं, भगवान का प्रसाद है, हर एक दृष्टि से उनके लिए लाभान्वित करने वाला है। हरि कीर्तन चल रहा है, प्रसाद दे रहा है, उसमें हाइजीनिक है, लेकिन दूर जाते थे, हटते थे उधर से, काफी लोग नहीं लेते थे। और कहां जाते थे, वड़ा पाव खाने के लिए। जो बनाता है वो पता नहीं कितने दिन में कब दो स्नान करता है,
उसके बकेट में देखोगे वही प्लेट है, दबाओ निकालो, दबाओ निकालो, मंत्र के द्वारा साफ करता हुआ मैं तो ऐसा साफ नहीं होता, फिर उसी प्लेट में खाएंगे। देखो अज्ञान कितना है, एक छोटा बच्चा भी समझ सकता है कि ये साफ नहीं है। रास्ते में खाना ये मनुष्य समाज का लक्षण नहीं है, केवल जानवर रास्ते में खाते हैं। और ये क्या है, जितना धनी को देखो इतना अच्छा घर है, बड़ा बड़ा घर है, लेकिन कार के बोनेट में बैठकर खाते हैं। जैसे एक बाप गरीब था, फटे एक पुराने कपड़े पहनता था, बहुत कष्ट से अपने बच्चों को बड़ा किया, उसको पढ़ाया, और बेटा आ गया, हॉस्टल में रहा करता था, बेटा आया फटा हुआ जींस पैंट पहन के, बोला बाप ने बोला ऐसा क्यों किया तू, मैंने इतना पढ़ा क्या हो गया तो फटा जींस क्यों पहन के, अरे फटा नहीं इसको मैं 1200 रुपए दिया हूँ। बाप कह रहा है कि मैं इतना कष्ट करके तेरे को फटा बिना फटा हुआ कपड़ा पहना देना चाहता हूँ और तू उसको ऐसे पहन के आ रहा है, मेरा बदनसीब हूँ मैं। देखो ये है कलयुग। कलयुग क्या है, जो बुराई है, जो दुखदाई है, उसको हम पैसा लेकर खरीदी करते हैं। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं यहाँ लोग कैसे कर्म करते हैं, वो दुख कैसे प्राप्त करते, दुख के लिए कष्ट करते हैं। नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं द स्ट्रगल हार्ड टू सफर, यू सफर हाउ बाय स्ट्रगलिंग हार्ड, कष्ट करते करते आप सफर करो। इसलिए प्रभुपाद जी भागवतम के एक तत्पर्य में लिखते हैं कि भगवान के धाम में जाने के लिए कष्ट नहीं करना पड़ता, पुण्य करने के लिए पाप नहीं, पुण्य करने के लिए कष्ट नहीं करना पड़ता, लेकिन पाप करने के लिए चार नियमों को तोड़ने के लिए कितना कष्ट करना पड़ता है। लोग लॉस वेगस जाते हैं, सिन सिटी, अभी देखो उसको कहते हैं सिन सिटी, एवरीवेयर इट इज सेड है सिन सिटी, पाप का शहर। और जानते हो सबसे ज्यादा लोग कौन जाते हैं उधर, भारतीय लोग जाते सबसे ज्यादा, क्योंकि भारतीय लोगों का कल्चर क्या है, तीर्थ को जाना, तीर्थ स्थान में जाना, किसी को तो तीर्थ स्थान बनानी है। जैसे बॉम्बे के वानखेड़े स्टेडियम को क्रिकेट की पंडरी देखो कितनी मूर्खता है, पंडरी इधर ही है नजदीक, लेकिन वानखेड़े स्टेडियम को लोग क्रिकेट की पंडरी, यानी कि धर्म नहीं भूल पाएंगे, अधर्म को धर्म बनाएंगे लेकिन धर्म को भूल नहीं पाएंगे। सिन सिटी में जाएंगे, हमारे कई भक्त वहां प्रचार करते हैं, अमेरिकन डिवोटीज, वो कह रहे थे सबसे ज्यादा भारतीय लोग आते, कम से कम थोड़ा तो जुआ खेल के जाते, और कम से कम यानी कि क्या, इतना सारा वेस्ट, इतना पैसा खो देते। एक डिवोटी कह रहे थे वो भक्त बनने के पहले काफी धनी परिवार के, भक्त बनने के बाद वो कह रहे थे अपना पूर्व इतिहास, बोले प्रभु जी आप जानते नहीं कि लोग कैसा पैसा खर्चा करते, जब वो मंदिर में आएंगे तब वो प्रश्न करेंगे व्हाई आर यू स्पेंडिंग, आप मूर्ति पूजा के लिए इतना पैसा क्यों खर्चा करते हो, ये क्या है, गरीब को क्यों नहीं देते। बोले ऐसे बोलने वाले है, उन्होंने एक बार देखा ये भारत में हुआ है, एक बहुत बड़े व्यापारी लंदन जा रहे थे, लंदन जाते जाते वो किसी क्लब में गए और क्लब में सब लोग जुआरी बैठे हुए थे, जुगाड़ खेल रहे थे, और जुगाड़ खेलते खेलते आधा घंटे के लिए आए थे केवल, उसके बाद उनको फ्लाइट पकड़ना था। आप जानते हो कितना पैसा उन्होंने कमाया, आधा घंटे के अंदर 1,07,00,000 रुपए, लेकिन पैसा का कोई वैल्यू नहीं, इतना पैसा हमारे मंदिर आधा रेडी हो जाता था, आधा निगरी का मंदिर रेडी हो जाता था, 1,07,00,000 रुपए आधा घंटे के अंदर। देखो तो इसलिए ज्ञान क्या है, ज्ञान हर एक चीज के ऊपर आपको सही है या गलत है, हर एक चीज को उसी दृष्टिकोण से देखने के लिए मदद करती है। भौतिक जीवन सही है या गलत है, आध्यात्मिक जीवन सही या गलत है, सही दृष्टिकोण को प्राप्त करके देती है। और ये जो भ्रम भक्त होने के बाद भी हो सकता है अगर हम भावनात्मक रह जाएंगे तो. भावनात्मक न बनकर हमें जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण है, तत्व ज्ञान है, उसको सीखना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए. जैसे चैतन्य महाप्रभु जब वृंदावन में आए थे और उनके साथ बलभद्र भट्टाचार्य, उनकी स्तुति करते सरोज दामोदर गोस्वामी, वो कैसे मृदु है, नम्र है, गंभीर है, ऐसे गुण उनको है, इसलिए उनको साथ ले जाओ, अपने साथ ले जाओ. बलभद्र भट्टाचार्य को ले आते चैतन्य महाप्रभु, काले धर पे आ जाते हैं और काले धर पे ऐसा समाचार सुनाई देता है. लोग बातें करते रहते हैं, क्या बातें करते रहते हैं, कृष्ण फिर से आए हैं, कृष्ण स्कंदा कहे. कैसे? मतलब रात के समय आप देख सकते हो काले धर पर हर रोज भगवान काले के ऊपर डांस कर रहे हैं. कालिया का जो फण है वो चमकता रहता है और भगवान डांस करते हैं. ऐसे सुनते गए बलभद्र भट्टाचार्य, तो उनकी भी इच्छा हो गई मुझे भी जाकर कृष्ण को देखना चाहिए. दे आकर चैतन्य महाप्रभु को कहते हैं कि महाप्रभु मुझे रात को जाना है कृष्ण को देखने कालिया धर पर, मैंने सुना है कि कृष्ण आए हैं. तो महाप्रभु ने क्या किया, एक झापड़ दिया. बोले तो किसने कहा, कौन से शास्त्र में लिखा है कि भगवान कलयुग में आएंगे, क्या गलत सुनते हो. चैतन्य चरितामृत में केवल तीन बार है झापड़ मारना, क्योंकि उसमें वो कोई क्षत्रियों का ग्रंथ नहीं है. भागवत में बहुत सारा आपको दिखाई देता युद्ध, लेकिन चैतन्य चरितामृत में केवल तीन बार. एक बार हरिचंदन को शिवराज ठाकुर ने रथ यात्रा के बीच में, वो हरिचंदन उनको ट्रस्ट कर रहा था इसीलिए. और महाप्रभु दो बार देते, एक बार आनंद के कारण, प्रेम के कारण, दूसरे बार सबक सिखाने के लिए. रूप गोस्वामी को उन्होंने चापड़ दिया था. जब रूप गोस्वामी ने अपने सुंदर अक्षरों से महाप्रभु जो गाते थे उसका अपने भावानुवाद लिखा था, और उसको देखकर महाप्रभु इतने प्रसन्न हो गए, उन्होंने इनको धीरे से चापड़ दिया और अपने गोद में बिठाया कि कैसे, किसने ये कैसे मेरे मन को समझ पाया. तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने कहा था केवल आपकी कृपा से. तो जब भट्टाचार्य ने कहा बलभद्र भट्टाचार्य कि मुझे भगवान को देखना है, महापुरुष ने उनको चापड़ दिया और कहा कि कहाँ का कलयुग में. तो उसके उसी समय कई पंडित लोग आ गए उधर, उन्होंने कहा देखो कितनी विडम्बना है कि हर रोज रात के समय जो फिशरमन मछली पकड़ने, मछली मार, वो यमुना में मछली पकड़ने के लिए जाता है अपने छोटे से नाव में, और उसके पास लैंटेन होता है. हाँ, लैंटेन ऐसा ऊपर टांग के रखता है और रात भर प्रयास करता रहता है मछली पकड़ने के लिए, तो उसकी होड़ी ऊपर नीचे होती रहती. देखो लोगों ने क्या किया, उस होड़ी को कालिया बनाया, वो लैंटेन को कालिया का फण के ऊपर का मोती बनाया, और मछली मार को कृष्ण बनाए. तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं यहां दो गलतियां हो गई बलभद्र भट्टाचार्य से. कृष्ण को साधारण समझ रहे थे क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ में निवास कर रहे थे और कह रहे थे कि मुझे जाकर कृष्ण को देखना है, वो एक गलती. और दूसरा, साधारण व्यक्ति को कृष्ण बना रहे थे, यह है अज्ञान का परिणाम. कृष्ण उसको साधारण बनना और साधारण व्यक्ति को कृष्ण बनना, ये भारत में हमेशा चलता है. जो कृष्ण है उसको लोग भूल जाते हैं. जैसे एक बार प्रभुपाद जी के पास एक व्यक्ति आए और उन्होंने कहा स्वामी जी माय गुरु इज गॉड, माय गुरु इज कृष्ण. प्रभुपाद जी ने कहा क्यों, तेरे गुरु भगवान क्यों है. बोले क्योंकि मेरे भगवान गुरु इसीलिए क्योंकि मैं शराबी था, उन्होंने मेरे से शराब से छुड़वा दिया, क्योंकि मेरे गुरु कुछ राख निकालते, कुछ सोना निकालते. तो प्रभु जी ने कहा दैट इज द क्राइटेरिया दैट ही स्टॉप यू फ्रॉम ड्रिंकिंग वाइन. तो मैं तो हजार लोगों को ऐसा किया, अमेरिकन लोग सबके सब ड्रग खाते थे, तो मैं तो तुम्हारे गुरु से बड़ा भगवान हूं. या आप कहते कि आपके गुरु कुछ सोना निकालते थे, भगवान है, भगवान की प्रकृति ने सोने का खान बना के रखा हुआ है। प्रोपोजन है होम शुड एक्सेप्ट, कृष्ण को कृष्ण के रूप में स्वीकार करो, जो कृष्ण नहीं है उसको कृष्ण को कृष्ण करके स्वीकार करो, विच इज मोर प्रैक्टिकल, विच इज मोर प्रैक्टिकल। प्रभुपाद जी ने प्रश्न पूछा, इसलिए ये जो भागवत और भगवत गीता है, ये ग्रंथ ऐसे सुंदर ग्रंथ है और उसमें केवल मनोरंजन नहीं, मनोरंजन तो सबसे अच्छा होगा हरि कथा सुनने में, इंद्रियों को संतुष्ट करेगा, हमारे इंटेलेक्ट को चैलेंज करेगा और आत्मा को संतुष्ट करेगा, ये सर्वांगीण प्रगति कर देता है भागवत, और इसको केवल प्रयास करना चाहिए पढ़ने के लिए। जस्ट एक बार चालू करने से क्या होगा, अपने आप रामायण महाभारत हैरी पॉटर, लोग हैरी पॉटर पढ़ते जो इमेजिनरी बुक है, उसमें क्या है, कुछ भी नहीं उसमें, वो मटका ही है, पॉट है, जिनकी भेजा वो मटके के समान है, वही उसमें रुचि रखते। महाभारत और रामायण पढ़ो, उसमें जो रुचि है, ज्ञान दिया हुआ है, जो साइकोलॉजी है रामायण और महाभारत में, ऐसे ग्रंथ आपको कहां दिखाई नहीं देंगे। दो गए 5000 साल के बाद भी हम देखते हैं रामायण के ऊपर जापान में, इंडोनेशिया में, अलग अलग देशों में उसका अध्ययन करते, उसके प्रति ड्रामा करते। तो इसलिए हमारे वैदिक ग्रंथ खास करके भागवत वो सर्वांगीण प्रगति करने में मदद करेगा, और सबसे बढ़कर हमारा जो अज्ञान का पर्वत है, तीसरे स्कंद में कपिल मुनि माता देवती को कहते हैं कि अज्ञान एक पर्वत के समान है, एक बड़ा पर्वत जो एक ही पत्थर है, लैंडस्लाइडिंग होता है, क्यों, क्योंकि पत्थर पर्वत इतना स्ट्रांग नहीं, लेकिन अज्ञान का पर्वत कैसा, लिमिटलेस है, स्ट्रांग है, उसको उसको चूर करना माइनिंग से नहीं होगा। वो कहते कैसे होगा, जब ध्यान के द्वारा, भक्ति के द्वारा, ज्ञान के द्वारा हम कृष्ण को हमारे हृदय में आह्वान करेंगे, स्वागत करेंगे, वही कृष्ण के चरण जो कमल के फूल से ही ज्यादा मृदु है, सॉफ्ट है, जैसे वृंदावन में जब कृष्ण गैया चराने के लिए जाते हैं, अगर एक पत्ता भी गिर के कृष्ण के हाथ में गिर जाता, गुरुजन को बता रहे थे, जो घनश्याम मेघ वरण उनका जो हाथ, अगर पत्ता भी गिर जाता वो उधर लाल हो जाता, इतना सॉफ्ट, ये भौतिक दृष्टि से नहीं, लेकिन वही भगवान के तन में जो और भी सॉफ्ट रहता है, वो कहते हैं जब आप भगवान को आह्वान करोगे, साधक अपने हृदय में उन चरणों का आह्वान करेगा तो क्या होगा, वही चरण जो इतने सॉफ्ट है वो थंडरबोल्ट बन जाते हैं, वज्रायुध बन जाता है, और वज्रायुध के स्पर्श जब अज्ञान के पर्वत के साथ होगा तो क्या होगा, वो अज्ञान का पर्वत पूरा पाउडर बन जाता है, चूर चूर होकर उसकी धारा हमारे हृदय से निकल जाती है। यह है भक्ति का मार्ग, उसको ठीक से अपनाने से हमारी दृष्टि, हमारा हृदय और हमारे कार्य सब कुछ बदल जाते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसका कोई प्रश्न है? हमेशा अगर भक्ति कहती है, भक्ति कर्माणि निरुद्धति भक्ति किंतु च भक्ति वाजम, भक्ति करने से हमारे कर्म के फल नष्ट हो जाते हैं, ये भक्तियों का दृष्टिकोण है, परंतु भक्तों का दृष्टिकोण क्या होना चाहिए, जो कुछ भी मेरे साथ में हो रहा है ये मेरे कर्म के फल है, और वही भगवान प्रहलाद महाराज जी को कह रहे हैं। श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं एक गुण है 64 भक्ति के जो अंग है उसमें से एक है कि तत्तेनुकम भगवान की कृपा की प्रतीक्षा करना, और भगवान की कृपा की प्रतीक्षा कैसे करना, यही हाथ जोड़कर जो आपके जीवन में हो रहा हो उसको सोच कर ये मेरे कर्म का ही फल है, मेरे ही पापों का फल मैं भोग रहा हूं, तो इसलिए भगवान मुझे भोगने की शक्ति दो, लेट मी मैं इसको सहन कर सकूं। ये नहीं कह सकता रहे, आपने कहा निर्दयती सब कुछ जल जाता है क्यों आ रहा है, ऐसे चालन नहीं कर सकते। भक्त का लक्षण है कि जो भी आ रहा हो मुझे, जैसे परीक्षित महाराज को साप मिल गया, साप मिलने के पहले ही उन्होंने वो साप उस साधु के गले में डाला, फिर वापस आते समय परीक्षित महाराज कहने लगता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की, ऐसे मुझे नहीं करना चाहिए था, ये मैंने अच्छा उदाहरण नहीं रखा। परीक्षित महाराज कहते जो भी मुझे होना है, जो कुछ होगा इससे वो मुझे होने दो, मेरे परिवार को नहीं, और आज ही हो जाए, मेरा पावर मेरी शक्ति मेरा राज्य और मेरा धन अगर इसके बदले में देना हो मैं देने के लिए तैयार हूं। और ऐसे कहते ही वो ब्राह्मण का जो एक संदेशवाहक आकर परीक्षित महाराज को कहता है कि दुर्भाग्यवश वो ब्राह्मण बालक ने आपको श्राप दे दिया, 7 दिन के अंदर आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो परीक्षित महाराज क्या कहते हैं, कृष्ण कितने दयालु है कि मैं ऐसा ही भगवान का भक्त नहीं बनता, अब भगवान मेरे लिए आयोजन कर रहे, वो आ रहे कैसे, तत्रा प्रसक्त कि मैं आसक्त था इस भौतिक जगत से, अभी भगवान आ रहे कैसे, वो द्विजशाप रूप, वो द्विज का शाप के रूप से मेरे सामने प्रकट हुए हैं। तो लेकिन उसके पहले उन्होंने रिएक्शन के लिए प्रार्थना की, रिएक्शन आने दो। इसलिए हमारे दृष्टिकोण से जो कुछ भी हो रहा है उसको यही सोचना चाहिए कि मेरा कर्म का फल है। इसलिए हम देखते हैं भक्ति रसामृत सिंध में इसको बहुत बहुत सुंदरता से रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं। कर्म कैसे नष्ट हो जाता है भक्त के लिए, एक तो भगवान पूरा निकाल भी सकते हैं, दूसरा उसका इफेक्ट कम कर सकते हैं भगवान। जैसे प्रभुपाद जी ने कहा जब सब्जी काटते समय अगर थोड़ा उंगली आपका कट गया आपको क्या समझना चाहिए, आज मेरा सिर काटने वाला था, मेरा उंगली कट गया। जैसे एक हमारे भक्त चेंबूर में रोड क्रॉस कर रहे थे, रोड क्रॉस करते करते वॉल्वो अचानक चालू हो गया और उनके पैर के ऊपर से गए, सोचो वॉल्वो पैर के ऊपर से जाना, उसका पूरा चटनी हो जाना चाहिए। 15 दिन हॉस्पिटल में थे लेकिन उन्होंने कहा प्रभु जी एक्चुअली मैं तो कुचल जाना चाहिए था, पता नहीं कैसे कुचला नहीं, यही है भगवान ने मेरे कर्म के फल को क्या कर दिया, केवल मेरे पैर से टायर चला गया, नहीं तो पूरा बस जाना चाहिए था, कुचल जाना चाहिए। एक दूसरा दृष्टिकोण है हमेशा, अगर बड़ा हो जाए तो और भी बड़े की अपेक्षा, अरे इतना ही हो गया एक्चुअली इतना होना चाहिए, दूसरे प्रकार से भगवान अपने कर्म को दूर करते। और तीसरा कैसे कुछ हो भी गया आपके साथ में लेकिन सहन करने की शक्ति है। जैसे मैं कह रहा था कि हमारे एक डिवोटी का गोडाउन जल गया, 1 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया, वो कहने लगे प्रभु जी मैं क्या कर सकता हूं, कुछ नहीं कर सकता। भक्तों की भगवान ऐसी परीक्षा करते हैं, देखो किसी भक्त के बेटी को भगवान ने नहीं लिया, मेरा तो क्या गया, मेरा कुछ नहीं गया, थोड़ा कुछ सामान जल गया। ये कृष्ण ऐसे ही करते हैं, अपने भक्तों को ज्यादा प्यूरिफाई करते हैं। तो देखने के दृष्टिकोण के कारण कर्म कम हो जाता है। अल्टीमेटली सफरिंग क्या है, इफेक्ट आपके ऊपर कितना इफेक्ट करता है, अगर इफेक्ट नहीं कर रहा हो देखने के लिए बड़ा दुख होगा लेकिन इफेक्ट कितना छोटा ही है उसके ऊपर। किसी का अपना अच्छा उंगली अच्छा नाखून है, नाखून क्या है, नाखून है उसमें कोई खून नहीं, डेकोरेटेड नाखून है, उसके लिए लोग पैसा खर्चा करते हैं, अगर वो कट गया तो दिन भर रोते रहते हैं। यानी कि कौन दुख जो बड़ा है छोटा है कैसे है आपके ऊपर निर्भर करता है। हमने उदाहरण दिया, हम लोग जाते रहते हैं बाहर, एक बार ग्रैंड रोड से हम लोग जा रहे थे तो समय एक दो तीन युवक हमें देखा, दो तीन हम लोग भक्त लोग जा रहे थे और हमारे सामने एक व्यक्ति जा रहे थे, उनके बाल नहीं थे, बहुत कम बाल थे। अभी विद्यार्थी लोग हमें चिढ़ा रहे थे, एक टकलिया, लेकिन लगा किसको, उसको लगा। तो इतना बेचैन हो गया, इतना बेचैन हो गया उसको, इतना गुस्सा है उनके ऊपर। देखो उन्होंने उनको देखा भी नहीं, क्योंकि ऐसे तो बहुत लोग रहते, क्यों वो सताएंगे बच्चे लोग, क्योंकि हमने पूरा किया हुआ है खुद अपने हाथ से, तो इसीलिए उनको चिढ़ाने में मजा आता है। लेकिन वो डिस्टर्ब हो गए, उसको नहीं कह रहे थे फिर भी वो डिस्टर्ब हो गए। इसलिए कभी कभी आपके लिए कुछ नहीं होता, लेकिन आप उसको आमंत्रण करते हो, मेरे साथ में ऐसा हो गया, मेरे साथ इसने ऐसा किया, नहीं आपके साथ में नहीं हुआ। एक बहुत सरल उदाहरण था कि वो बच्चे लोग हमें हमारी मजाक कर रहे थे, लेकिन उसको लगा और इतना विचलित हो गए, वो गाली देता जा रहा था उनको। हम लोग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करने प्रयास कर, नहीं तो फिर आप जा नहीं पाओगे। अगर सोचोगे अरे लोग क्या सोचेंगे, गंजा बोलेंगे, शावलिन बोलेंगे, चाणक्य बोलेंगे, सब कुछ अलग अलग सुनाई देता हमको, नया नया नाम, तो उसमें मनोरंजन होता। अगर हम विचलित हो जाएंगे तो फिर हर समय मंदिर के बाहर जाने के बाद भीख डाल के जाना पड़ेगा। तो इसलिए आप कैसे कैसे, किसने कहा था, श्रीधर महाराज ने कहा था कि सफरिंग इज कंपल्सरी पर मिजरी इज ऑप्शनल, नो मिजरी इज कंपल्सरी एंड सफरिंग इज ऑप्शनल। यानी कि उसका जो रूप है भौतिक दुखों का, वो तो सबके लिए कंपल्सरी है, लेकिन उसको कितना मात्रा में स्वीकार करना है आपके ऊपर है, दैट चॉइस वी हैव। जैसे देवामृत के एक मित्र थे, वे उनके एग्जाम में बहुत होशियार थे, पहला हमेशा फर्स्ट रैंक स्कूल में, कॉलेज में, इंजीनियरिंग में, ऑलवेज गेटिंग हाईएस्ट ग्रेड्स। एक रेगुलर टेस्ट में उनका सेकंड आ गए, उन्होंने आत्महत्या कर ली। ऐसे कई विद्यार्थी है, दे आर टोटली पार्टी करते 35% होने पर भी। पार्टी करते अरे पास हो गया बस। तो यहाँ वो सेकंड रैंक आया 2 मार्क से, तो उसको सहन नहीं कर पाए। तो सफरिंग क्या है, व्हाट इज सफरिंग, यही बेशर्म होकर पार्टी कर रहे हैं। वो ट्रांसेंडेंटल नहीं है वो, लेकिन वो उसको स्वीकार नहीं कर रहे कि मेरे लिए कुछ नहीं है, ठीक है चलता है। जैसे हम देखते हैं क्लास में कई विद्यार्थियों को दंड देने पर उनको अच्छा लगता है, देख मैंने ऐसा मस्ती किया, टीचर ने मुझे दंड दिया और पूरे क्लास को बताएंगे, क्यों वो बेशर्म है। और ऐसे दुखों को सहन करने का जमा लिया कि ना हमको ऐसे ही करना है, और दूसरे किसी को केवल टीचर बोलने से वो अपने बड़े माता पिता को ले आते, आज टीचर ने मुझे गाली दिया बिना किसी कारण का। इसलिए सब कुछ आपके ऊपर निर्भर है, कितना बोझा लोगे आप, हाउ मच बोझा लेना चाहते हो, उसके ऊपर निर्भर है। बोझा नहीं लेने का पर्याय प्रक्रिया क्या है, कृष्ण भक्ति। कृष्ण भक्ति के द्वारा आपका बोझा अपने आप कम हो जाएगा, आप जान जाओगे नहीं ये तो मेरे साथ होगा, क्योंकि अहंकार को चोट बैठते ही रहेगा। भौतिक जगत है तो किसी न किसी, अगर आपके घर में चोट नहीं लगेगा तो ऑफिस में लगेगा, ऑफिस और घर छोड़ के आश्रम में आओगे तो सहपाठी ब्रह्मचारी आपको आपके अहंकार को चोट देंगे। इसलिए सबके जीवन में किसी न किसी प्रकार से अहंकार के ऊपर आक्रमण होगा ही, वो सबसे बड़ा दुख है, उसको सहन करने के लिए ये प्रक्रिया, ये कर्म की कर्म को किस प्रकार से हैंडल करने का है एक कुशलता है भक्ति के द्वारा।
Some people are really fortunate to get this knowledge, Vedic knowledge, and some are not. Only like think like some people that those who have not got this knowledge, they can claim that okay, you know, this knowledge is didn't come to us in this human form of life. So he's a fit candidate to get this knowledge. You know?
उनका प्रश्न ऐसा है कि कई लोगों को मिला है, कई लोगों को मिला नहीं है। हाँ, तो जो मिला है उनको वो fortunate है, जिनको मिला नहीं है, तो कौन योग्य है इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए? इसलिए ये जो प्रमाइसिस है, ये जो थेरी है कि अरे सब कई लोगों को मिला, कई लोगों को नहीं मिला, ये धारणा ही गलत है। क्योंकि मनुष्य समाज में है, मनुष्य योनि हर एक परिवार में ज्ञान देना चाहिए। इसलिए हम लोग दोपहर के समय चर्चा कर रहे थे इसी की कि केवल माता पिता बने कैसे है, माता पिता बने कैसे है, केवल वंश की वृद्धि हो गई, इसीलिए उसमें कोई कला नहीं है। अगर दोष देना हो किसी को, वो माता पिता को देना चाहिए, क्योंकि वो ज्ञान नहीं दे रहे, वो कह रहे उनकी गलती नहीं है, तो उनके माता पिता को दो जिन्होंने उनको ज्ञान नहीं दिया। तो इसलिए वैदिक संस्कृति ऐसी थी कि देखो हर एक घर में तुलसी होता है, तुलसी की पूजा करेंगे, अब किसी न किसी देवी देवताओं की पूजा में अंतिम मंत्र क्या होता है, हरे कृष्ण मंत्र होता है, किसी न किसी प्रकार से विष्णु आते ही है, तो उनका एक कर्तव्य है इसको ज्ञान के रूप में देना, क्यों ऐसी पूजा कर रहे, अगर नहीं दे रहे तो गलती भगवान की नहीं है, भगवान ने प्रचुर मात्रा में भगवद गीता हम देखते हैं महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा वितरित किया गया, सबसे ज्यादा तुकारा महाराज के अभंग जैसे है, इतना सारा स्थान है, इसलिए यू कैन ब्लेम देम, उनको हम नहीं कर सकते, हर एक व्यक्ति को ब्लेम खुद लेना ही, क्योंकि आपने इसको स्वीकार नहीं किया, आपने सोचा ही नहीं कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, आपके मन में प्रश्न नहीं आया। और दूसरा है कि गलती भक्तों को भी स्वीकार करना चाहिए, क्यों, क्योंकि अभी तक हमने प्रचार नहीं किया, अभी तक हम प्रचार नहीं कर रहे, और प्रचार बढ़ाना चाहिए, और लोगों को ज्ञान देना चाहिए। जैसे प्रभुपाद जी ने इंद्रधनु महाराज को कहा, वो चौपाटी पे बीच पे कीर्तन कर रहे थे और एक स्त्री अपने कान को जोर से बंद करके सुनना नहीं चाहते थे, फिर आके प्रभुपाद जी इनसे चर्चा कर रहे थे, हाउ वॉज द हरिनाम, हाउ वॉज प्रीचिंग, तो उन्होंने कहा प्रभुपाद जी वॉज सो डिफिकल्ट, दीर्घ सांस लेते हैं, कहे कि बहुत डिफिकल्ट है, प्रभुपाद जी ने कहा वेरी डिड आई से प्रीचिंग इज इजी, मैंने कब कहा था प्रचार आसान है, क्या हो गया, तो उन्होंने कहा प्रभुपाद जी जब हम प्रचार कर रहे थे गुडी स्त्री हरिनाम को नहीं सुनना था, इसलिए अपने उंगलियों को दबा के भंग करके खड़ी है, तो प्रभुपाद जी ना यू आर सच ए बिग मैन, यू शुड हैव जस्ट पुल्ड हर हैंड, उसके हाथों को निकाल लेना चाहिए सुनने के लिए। तो इसलिए इसमें गलती जीव का ही है, और भक्त स्वयं उत्तरदायित्व लेता है कि अरे मुझे प्रचार करना चाहिए था, और भक्तों को बनाना चाहिए, लेकिन मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद द लिविंग एंटिटी, इसलिए हमें बचपन से ही ये ज्ञान देना चाहिए, माता पिता को ज्ञान देना चाहिए, दूर रखते हैं। बच्चा निर्मा का जब एडवर्टाइजमेंट बोलता है खुश हो जाता है, देख मेरा बच्चा सफेद लाए निर्मा, उसका एडवर्टाइजमेंट बोल रहा है खुश हो जाता है, नहीं उसको हरिनाम सुनाओ, और क्योंकि संस्कार ठीक से नहीं देते, क्योंकि उनको भी कोई संस्कार नहीं दिया, ये परंपरा चालू है, तो ये परंपरा चालू होने के कारण सारे ज्ञान का मार्ग है वो लुप्त होता जा रहा है। पहले ग्रैंड पेरेंट्स ये स्वाभाविक था, वो बैठकर अपने परिवार के लोगों को रामायण और महाभारत सुना देते, काफी लोग हम लोगों ने सुना है, परंतु आजकल सब लोग ग्रैंड पेरेंट्स, फिर उनका पोता, फिर माता पिता ब्रेड खाते खाते टेलीविजन देखते रहते हैं, तो उससे गलती किसकी? तो फिर किसी आपको अलग चैनल, मेरे को अलग चैनल, फिर हर एक कमरे में एक एक टेलीविजन। एक राक्षस से ठीक नहीं हुआ, बहुत सारे राक्षस को लेकर। हमारे राधा गोपीनाथ को कहते हैं टेलीविजन इज वन आई डीमन, एक अंग वाला राक्षस है, और उसके बहुत सारे अंदर चैनल होते हैं जो अलग अलग प्रकार से वो अपने अस्त्रों को छोड़ता है। तो स्वभाव है उसको देखकर, जैसे क्रिकेट है, क्रिकेट किसके लिए बैठ जाते लोग सुबह उठकर, जो जिंदगी में उठेंगे नहीं, जब ऑस्ट्रेलिया में मैच चलोगे 2 बजे उठ जाते। मंदिर में मंगल आरती खेलाओ, अरे इतना जल्दी 4:30 बजे कैसे आ सकता हो? लेकिन क्रिकेट चल रहा हो। जैसे हमारे एक डिवोटी कह रहे थे, बोले मैं क्या करता था सुबह उठने के लिए, क्रिकेट चालू है, श्री वैष्णव भी, वो कहते थे मैं रात को 2 बॉटल पानी पीता था, ये तो खुलेगा नहीं, सब जानते हो क्या हो गया। अपने आप बराबर 2 बजे उठना ही पड़ता था उनको, नहीं तो हैबिट नहीं है। तो वो क्या क्या करते हैं क्रिकेट मैच देखने के लिए, लेकिन मंगल आरती करने के लिए कल जी प्रयास किया, लेकिन नींद खुला ही नहीं, नहीं प्रयास किया ही नहीं, 1 लीटर पानी लो कम से कम, उससे काम हो जाएगा। इसलिए गलती जीव का ही है, इट्स द फॉल्ट ऑफ द लिविंग एनिटी बिकॉज ही इज नॉट एंड द डिवोटी टेक्स इट फॉल्ट। हमारी ही गलती थी, लेकिन कोई आया प्रचार किया बचाया। इसलिए प्रभुपाद जी ने क्या कहा है कि प्रीचिंग इज अवर बिजनेस, भक्तों का धंधा क्या है? प्रचार करना। जो कोई भी आए उसको कृष्ण के बारे में बोलो, उसको डिस्टर्ब करो, उसको डिस्टर्ब होना चाहिए। जैसे देवामृत स्वामी कहते हैं एक प्रोग्राम कर रहे थे, और उस प्रोग्राम में एक तरुण विद्यार्थिनी आ गई, वो एस्ट्रोफिजिक्स में पीएचडी कर रही थी, एस्ट्रोफिजिक्स आकाश के बारे में, स्पेस के बारे में पीएचडी कर रही थी, और उनका सब्जेक्ट भी ऐसा ही था, वैदिक दृष्टिकोण से वो बता रहे थे गैलेक्सी के बारे में, और वैदिक दृष्टिकोण को इतना बेहतर समझा रहे थे कि जो ये पीएचडी कर रही थी उसके अनुसार पूरा विरुद्ध था। वो चली गई डिस्टर्ब होकर, और वो खत लिखी देवामृत स्वामी को कि मेरे जिंदगी में सबसे ज्यादा अगर मैं खुन्नस खाती तो आपके ऊपर, क्योंकि आपने क्या कर दिया, मेरे देश को ही हिला दिया। अभी न तो मैं मेरा ज्ञान को पढ़ पा रही हूँ ठीक से, क्योंकि संशय है कि जो मैं पढ़ रही हूँ गलत है, और ये पालन करना भी मुझे संभव नहीं है। अरे यू हैव डिस्टर्ब मी एवरीथिंग, तो मैं बोला वेरी गुड, दैट इज व्हाट प्रॉपर वांटेड मी टू डू। भक्त क्या करते हैं, अगर अभी कोई भेल खाने वाला है इधर, कोई नहीं हो सकता, उसको हमेशा याद आएगा ऐसा डालो ऐसा निकालो, प्लेट कैसा डुबाते वैसा निकालो, यही सुनने मिलेगा आपको यहाँ आकर। कैसे भौतिक जीवन जगत में सुख का ये आवरण है, और इस आवरण को पर्दा को यहाँ खुला जाएगा, तो जैसे बाहर जाओगे आपको केवल, जैसे राधानंद महाराज बता रहे थे एक बार मुंबई प्रवच, एक मुंबई में प्रोग्राम हो रहा था, वो कह रहे थे कि देखो कि लोग बॉम्बे में, बॉम्बे की जनसंख्या कितनी है 1.5 करोड़, बराबर 1 करोड़ 50 लाख के ऊपर है, और बॉम्बे का जो ड्रेनेज सिस्टम कहा जाता है, जैसे लोग कहते थे ना ऑल रोड लीड्स टू लंदन, तो वैसे ही बॉम्बे में कहे ऑल टू लीड्स टू ओशन, सारा जो विस्टा है वो समुद्र में चला जाता है। ग्राफिक प्रवचन कर रहे थे महाराज, और कहने लगे देखो कितना लोगों का स्टूल चला जाता है समुद्र में, और उसको कौन खाता है? मछलियां खा लेती है, और फॉस्फेट होने के कारण मछलियां स्ट्रांग बन जाती है, और उस मछली को ज्यादा भाव में बम्बे में बेचते हैं। और महाराज कह रहे हैं देखो, तो लोग क्या कर रहे हैं, दे आर ईटिंग स्टूली फिश। वैसे कह जी अगर कोई बैठा हो हमेशा उसको यही याद रहेगा, अरे वो ये नहीं देखेगा फिश को, नहीं देखेगा जैसे और एक उदाहरण दे रहे थे, वो कह रहे थे कि देखो जब डिवोटीज भले साधु लोग जब विवाह के लिए जाते हैं देखने के लिए, सन्यासियों को भी लोग बुलाते हैं और वो भागवत पढ़े रहते हैं, भागवत में क्या लिखा है, सातवें स्कंद में लिखा है, प्रहलाद महाराज जी लिखते हैं जो भी सोना है वो किसके समान है, क्या लिखा है भागवत में, निष्ठा के समान है। तो महाराज जी कह रहे थे जब हम जाते हैं हम क्या देखते, इतना सारा रिश्ता भरा है सब जगह, अभी हंसने रहे कोई। ये साधु का दृष्टिकोण है, बाकी का दृष्टिकोण है अरे उसके पास ज्यादा मेरे पास कम है। साधु का दृष्टिकोण क्या है, इसके पास चूल ज्यादा है इसके पास कम है, ये शास्त्र दृष्टिकोण देता है, डिस्टर्ब कर देता आपको। इसलिए लोग कहते मंदिर में नहीं, नहीं हरे कृष्ण मंदिर में तो नहीं जाना है, किसी प्रवचन सुनना पड़ता है। तो ये जब विद्यार्थी ने सुनी उसको 8 दिन के लिए नींद नहीं आया, क्योंकि एस्ट्रो फिजिक को आग लगा दिया, उसके फाउंडेशन को हिला दिया। तो 8 दिन के बाद वो आकर बोली आई वॉन्ट टू नो मोर अबाउट कृष्ण, मैं कृष्ण के बारे में और जानना चाहती हूँ। और अब वो दीक्षित भक्त है और भक्ति वेदांत इंस्टीट्यूट में अपने ज्ञान को लेकर, वैदिक ज्ञान को लेकर अभी वो प्रेजेंट करती है। दिस इज बेटर प्रॉस्पेक्ट, हमारे पास सही फिलोसफी है। उसको उसका भी ज्ञान है, भौतिक ज्ञान है, और उसको आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा लोगों को जब प्रेजेंट करती है, नाउ शी इज गोइंग टू डिस्टर्ब मोर एस्ट्रोफिजिक्स। तो इसीलिए हमें ये भक्तों का रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक तो हर एक जीव को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है कि मैं भक्त नहीं हूं, और दूसरा भक्तों को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए कि मैंने प्रचार नहीं किया। श्री प्रभुपाद जी कहा करते थे 1922 आई मेट माई गुरु महाराज, आई शुड हैव ज्वाइन देन, मुझे उसी समय भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के मिशन में ज्वाइन करना चाहिए था, लेकिन क्या करूं, माया इज देयर, प्रभुपाद जी का एक फेमस प्रवचन है, बिकॉज माया वॉज देयर आई कुडंट डू इट, बट आई नेवर फॉरगॉट दैट इंस्ट्रक्शन, एटलीस्ट नाउ आई थॉट अभी तो करूंगा, बेटर लेट देन नेवर। देरी से हुआ होगा लेकिन ऐसा तो नहीं होना चाहिए कभी नहीं हुआ, ऐसी भावना के साथ गए प्रचार किया। प्रभुपाद जी कहते आई वॉज एन वन ओल्ड मैन, इनसिग्निफिकेंट ओल्ड मैन, कितने लोगों को मैंने डिस्टर्ब किया, उनके जीवन में क्या कर दिया, उनके भौतिक जीवन को खिला दिया। तो भौतिक जीवन जब हिल गया तब तो वहां जगह हो जाता है कृष्ण भक्ति के लिए, जब कृष्ण भक्ति आ गई तो उसके इर्द गिर्द आप अपने जीवन को बनाओ। पहले क्या था, भौतिक जीवन ही था पहले, जैसे हमारा बोनसाई ट्रीज है इधर, वो कैसे बढ़ता नहीं है क्योंकि उसका मेन रूट है उसको निकाल लेते हो, उसको मेन रूट को निकालने से क्या होगा, बढ़ता ही नहीं। वैसे ही आध्यात्मिक ज्ञान क्या है, एक भौतिक जीवन का मेन रूट को ही काट देता, उसको काटने से फिर वो बढ़ता नहीं है। केवल आपको जितना चाहिए उतना ही, एज मच एज पॉसिबल। हमारे दयानिधि बुआ जो बता रहे थे, उनके एक मित्र है होटेलियर है बड़े, पहले होटल में रात को 1 बजे तक बैठते थे, उतना ही कमाते थे। अभी उन्होंने सोचा मैं तो कष्ट कर रहा हूं, अभी रात को 1 बजे तक नहीं बैठते, 5 बजे वापस आ जाते हैं, 2 घंटा भागवत पढ़ते हैं, सुबह 3:30 बजे उठ के 16 माला जप करते अपने परिवार के साथ, बोले कृष्ण दे रहे। और एक हमारे डिवोटी, मैं एक कहानी बोलकर समाप्त करता हूं, मुरलीधर प्रभु बता रहे थे एक बार उनको भक्तों ने बुलाया कुरुक्षेत्र यात्रा के लिए, और तभी वो प्रैक्टिस चालू किए थे, उन्होंने सोचा नहीं अभी चालू किया हूं कैसे जा सकता हूं, ये ठीक नहीं है। उनको जबरदस्ती डिवोटी ने कहा केवल 3 दिन के लिए जाना है, आ जाओ, 3 दिन में आपका कुछ ज्यादा जाएगा नहीं। उन्होंने बोला नहीं 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 जा सकता, वो गए नहीं। बोले उनका प्रैक्टिस अच्छा चल रहा था, उस 3 दिन में एक भी पेशेंट नहीं आया, एक भी पेशेंट नहीं आया। फिर वो चैतन्य चरितामृत पढ़ रहे थे, चैतन्य चरितामृत में जहां नारद मुनि मृगहारी को वचन दे रहे हैं, मृगहारी को कहा उन्होंने अपना धनुष बाण तोड़ दो, तो मृगहारी ने कहा धनुष बाण तोड़ूंगा तो फिर खाऊंगा क्या, ये तो मेरा धंधा है। तो बोले मैं आपको दूंगा, आई विल प्रोवाइड। मृदारी नारद मुनि के प्रति विश्वास रखकर वो धनुष बाण को फेंक देते। तो वहां प्रभुपाद जी लिखते हैं, योर अर्निंग इज नॉट योर मेंटेनेंस, हु मेंटेन्स यू, कृष्णा इज द सोर्स ऑफ योर मेंटेनेंस, योर इनकम इज नॉट द सोर्स ऑफ योर मेंटेनेंस बट कृष्णा इज द सोर्स ऑफ एवरीबडीज मेंटेनेंस। तो इसलिए भौतिक जीवन क्या हो जाता है, वो कृष्ण जीवन में कृष्ण का जीवन केंद्र बिंदु हो जाता है और इर्द गिर्द। और एक डिवोटी है वो केवल चार घंटा, अगर आपको वो कला नहीं है तो नहीं करना चाहिए, वो स्टॉक मार्केट में काम करता है, लेकिन उनका जीवन शैली क्या था, एक हर रोज कम से कम दो लेक्चर सुनना ही है, कुछ भी हो जाए दो लेक्चर सुनना, हफ्ते में चार बार मंदिर में ही 16 माला जप करना, बच्चों को मंदिर में ले जाना। इस प्रकार से वो 2 से लेकर 7 बजे तक जाप करते थे। उनका खुद का बिजनेस है, अगर कोई जाप ऐसा करने लगेगा तो फिर आपको तो टाइम पे जाना चाहिए, इसका गलत समझो मत, उनका वैयक्तिक खुद का बिजनेस था, 5 घंटा काम करते थे और सब कुछ इंद्रिय भोग का अपने संपत्ति को दिखावा नहीं कराते थे, ये लिया वो लिया। तो अंत में वो कह रहे थे कि देखो प्रभु जी, देर आर मोर पीपल हु वर्क मोर हार्डर देन मी, मेरे से भी ज्यादा कष्ट करने वाले लोग हैं, लेकिन क्या हुआ, मेरे पास उनसे ज्यादा पैसा है, कहां से आ गए, और मैंने कुछ एंड इट डजंट गैम्बल, स्टॉक में कोई गैम्बलिंग नहीं करते, म्यूचुअल फंड में ही वो उनकी एक्सपर्टी है। तो हाउ दिस हैपेंड, कैसे हो गया, क्योंकि मैंने मेरे भक्ति के जीवन को महत्व दिया, भक्ति के जीवन को महत्व देने के कारण अपने आप कृष्ण प्रोवाइड करेंगे, जितना मुझे चाहिए जितना मेरे लिए आवश्यक है उतना देंगे। तो ये जो निष्ठा है ये भक्तों में होना चाहिए, तो अपने आप सेवा बढ़ जाएगा और अपने आप लोगों को प्रचार करने के लिए इच्छा बढ़ेगी और लोगों को लेकर आएंगे यहाँ भक्ति के लिए, और अपने आप फिर मंदिर भी बनेगा और ज्यादा लोग आएंगे। हम कभी कभी कह रहे थे कि यहाँ लोग नहीं आना चाहिए, हमें बाहर जाना चाहिए प्रचार करके और केवल सही लोगों को यहाँ लेकर आना चाहिए, यहाँ कोई बीच नहीं है, चलो समुद्र देख कर आते हैं, लोग आते हैं ना समुद्र का दर्शन किया चले गए, ऐसे लोग नहीं चाहिए, फ्लोटिंग क्राउड जैसे हमें कहते हैं फ्लोटिंग क्राउड, आए इधर उधर देखा और चले गए। ये एजुकेशनल सेंटर है, ये क्या, यहाँ एजुकेशन होता है, केवल जो विद्या अर्जन करने की इच्छा रखते हैं वही लोग यहाँ आना चाहिए, तो बाकी लोग आएंगे तो फिर बीच बन जाएगा, यहाँ फिर होटल खुलेगा, कोई चाय बेच रहा है, कोई समोसा बेच रहा है, कोई पकौड़ा बेच रहा है, तो ब्रह्मचारी को वही संभालने से पूरा जीवन चला जाएगा। नहीं, ऐसे लोग नहीं चाहिए, कैसे चाहिए कि विद्या अर्जन करने की इच्छा से यहाँ लोग आएंगे, बैठकर सुनेंगे और डिस्टर्ब होकर चले जाएंगे। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की, गौर निताय की। 5 मिनट के लिए कीर्तन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन लाइन को एक लास्ट
After teaching you describing that those who really come to Krishna and desire material desire, so Krishna doesn't give anything to them, and those who not desire, so Krishna gives everything to them. But what is the best desire we follow? Because Yudhishthira Maharaj is a great tradition that we not follow, we do not imitate to that. So what is the best desire?
उनका प्रश्न है, दोपहर हम लोग चर्चा कर रहे थे उस समय, कहा कि भगवान जो चाहते उनको देते नहीं, जैसे रावण कुंभकर्ण चाहते थे कि वो चिरंजीव बने लेकिन उनको मिला ही नहीं, विभीषण नहीं चाहते थे उनको चिरंजीव बन गए, और युधिष्ठिर महाराज राज्य नहीं चाहते थे उनको राज्य मिल गया, दुर्योधन राज्य चाह रहा था उसको मट्टी मिल गई, मट्टी में वो भीम के पैर से कुचला गया। तो इनका प्रश्न है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, हम तो युधिष्ठिर महाराज जैसे नहीं है, विभीषण जैसे नहीं है, उनके चरण चिन्हों में चलना चाहिए, हमारे कर्तव्यों को करते करते इसी को कहते हैं कर्म कौशल,
अत्याहार प्रयास प्रज्वल पूर्णिमाग्रह से जो सिद्धांत है रूप गोस्वामी कहते हैं ज्यादा प्रयास नहीं करना चाहिए। ज्यादा प्रयास करने से ज्यादा प्रयास नहीं करना इसका अर्थ नहीं कि आलसी बनना, ये हम लोग प्रपोज नहीं कर रहे। कृष्ण भक्त सबसे ज्यादा कार्यशील रहते हैं। हम देखते हैं भक्त लोग इतना लाइफस्टाइल उनका, एक बार सेवा चालू हो गया जो सेवा कर रहा है उनका लाइफस्टाइल बहुत ही, क्योंकि इतना सारा डिमांड है, इतना सारा प्रचार करना है, तो हमेशा कार्यशील रहते हैं। इसलिए भौतिक इसमें देखिए कितना विचित्र है। एक डिवोटी कह रहे थे जो सिंगापुर में काम किया करते थे, वो कह रहे थे कि उधर वो लोग इतने निष्णात है आपको प्रलोभन दिखाने में, आपको सैलरी देंगे अच्छा से और उधर ही छीन लेंगे। कैसे छीन लेंगे? बड़े बड़े मॉल निकालकर उसमें आपको जो खरीदी नहीं करना है उसको लोग खरीदी करेंगे। पहले अगर आप सोचो यार में अगर मेरे गांव में रहता तो ये खरीदी करने का वस्तु है क्या? नहीं खरीदी। जैसे हम देखते हैं मंदिरों में लोग हर एक व्यक्ति कैमरा लेके आता है, तो कैमरा का युग धर्म है क्या? हर एक व्यक्ति कैमरा लेकर आएगा, कीर्तन का फोटो निकालो, गुरु का फोटो निकालो, तो युग धर्म क्या? हरिनाम संकीर्तन है, कैमरा धर्म नहीं। और 99% नोबडी वॉचेस दैट। इतना सब इंफॉर्मेशन लोग इकट्ठा करते हैं उसको कोई देखता नहीं है। इसलिए कौन सा कैमरा खोलना चाहिए? यहां का कैमरा। इसलिए ऐसे वस्तुओं को खरीदी करना नहीं है जो योग्य नहीं है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो अगर यही वो डिवोटी कह रहे थे कि अर्निंग इज नो प्रॉब्लम, कितना ही कमाओ अगर आपके अंदर शक्ति है। हम ये लिमिट नहीं कर रहे कि इतना ही कमाओ, कितना ही कमाओ, परंतु कहां आपको ध्यान देना है, खर्चा कैसे करना है। जैसे हम कल बता रहे थे, लोग डिवोटी को पूछने के लिए आते, प्रभु जी ये जॉब करो, वो जॉब करो, पैसे कैसे कमाओ, ये प्रश्न करने के लिए आते। फिर पैसे कमाने के बाद कभी नहीं आते प्रभु जी कैसे खर्चा करो, इसके लिए नहीं आते। उसके लिए आना चाहिए, वो कहेंगे 50% मंदिर के लिए दो। नहीं, वो मंदिर के लिए नहीं होगा, वो तो मेरे खुद के तेल के लिए, शैंपू के लिए, इसके लिए उसके लिए, डीडी वर्षिक चालू रहना चाहिए ना, अर्चना पद्धति, उसके लिए पैसा श्रृंगार में। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते दिन किसके लिए चला गया? डेकोरेशन करने में। रात किस में चला गया? सोने में चला गया। दीवा से शरीर रहता है, रात को सोने में और दिन में शरीर सजाने में चला गया। तो इसलिए वो कह रहे थे कि अर्निंग इज नॉट अ प्रॉब्लम, स्पेंडिंग इज अ प्रॉब्लम। लोग कैसे खर्चा करना है इसको नहीं जानते, और अंत में इतना बड़ा लोन बना के रखते। अभी अमेरिका में एक नया पॉलिसी निकला हुआ है, देखो कितना राक्षसी वृत्ति है। लोग जिंदगी भर 35 साल तक मॉर्गेज पे करते रहते हैं, मॉर्गेज पे करते रहना, और जब रिटायर्ड हो गए आपका मॉर्गेज बंद हो जाता है, आपके पास सोचो कि $400,000 $500,000 यानी कि 2-2.5 करोड़ का घर रहता है। तो बैंकर लोग ने भी एक नया स्कीम निकाला है, वो लोगों को कहते हैं ये घर छोड़कर किसको देकर जाओगे, क्योंकि अमेरिका में सिस्टम है कि बच्चा अलग, बेटी अलग, माता पिता अलग, सबका अलग अलग अकाउंट, सब स्वतंत्र है। तो बैंक प्रश्न करता है किसके लिए छोड़ के जा रहे हो, व्हाई नॉट एंजॉय। कहते आपका मॉर्गेज खत्म हो गया, विल गिव $400,000 मोर, ये घर बैंक के नाम पे करो, ये $400,000 लेकर क्या करो, अलग अलग आइलैंड चले जाओ, बूढ़ा पति पत्नी फिर से लोन लेते हैं उस घर के ऊपर, बैंक के ऊपर हो जाता है, और वो 400,000 बैंक में रहेगा, फिर वो लेंगे थोड़ा पेंशन रहेगा, फिर जो खर्चा नहीं करने वाले थे फिर अलग अलग द्वीप में चले जाओ, बड़े बड़े कॉस्टली सेल्फ ग्रेटिफिकेशन में लगा देते। तो जब मरते हैं तो क्या होगा, पूरा घर बैंक के पास आ जाएगा, अगर आधे में मर गए तो भी बैंक के पास आधा पैसा और घर भी आ जाएगा। तो वो कितना विकृत है, लोगों को देखते कि ये लोग इंद्रिय तृप्ति करने में संलग्न है तो हम इसका पैसा बना लेंगे। दिस इज अ न्यू स्कीम नाउ।
घर बच्चों को मत छोड़ो, अपने किसी को मत दो, आपके नाम से बड़ा लोन ले लो और उस पैसा को लेकर जो आपके पास शक्ति नहीं थी भोग करने के लिए, अफोर्ड भी करना चाहिए ना इंद्रिय भोग, अगर उतना पैसा नहीं तो इंद्रिय भोग नहीं कर सकते, लोन ले लो। फिर अगर आपको वेस्ट इंडीज में जाना है 8 दिन के लिए तो उधर चले जाओ, तो हो गया 50,000 डॉलर खत्म हो गया। लेकिन क्या है, मरना तो है, क्या घर लेके जाना है? तो लोग उस स्कीम को भी बाय कर रहे हैं कि भारत में भी आ जाएगा। फिर जो बेटा इंतजार करता रहेगा, मेरा पिताजी मेरी माता सब कुछ मेरे को छोड़ के जाएगी, बाद में जब जाएगा उधर बोलेगा बैंक बोलेगा मेरा है, तेरे पिताजी को हमने पैसा दिया था इंद्रिय भोग करने के लिए, संस्कृति जरूर होगा भारत में भी, क्योंकि कि हमें किसको पालन करना है, हमारे महाजन कौन है, अमेरिकन और यूरोपियन, निश्चित रूप से होगा। देखो कितना डरावना है कि नहीं आपके परिवार को मत दो, आप ही भोग करो। जो भोग करने के लिए शक्ति नहीं है, पैसा नहीं है, घर को गिरवी रख के उतना पैसा लेके अलग अलग जगह में भोग करेंगे, वो भोग करते करते पूरा करने के पहले मर जाएंगे क्योंकि बूढ़े है, उतना लेने की शक्ति नहीं है, तो घर भी दान का हो गया और पैसा भी दान का हो गया और उनके परिवार के लोग देखेंगे अरे चला गया। जैसे दिल्ली में हुआ था, एक आदमी उनके बच्चे इतने उनको तंग कर रहे थे, बाप का घर, बेटा और उसकी बहू उसकी पत्नी उसको इतने तंग कर रहे थे, फिर एक बार बेटा और उसकी पत्नी चली गई किधर, तो बाप ने क्या किया, घर को बेच दिया, घर को बेचकर बैंक में पैसा रखा और किसी होटल में रहने लगे। तो बेटा गया वापस, देखता है कोई दूसरा उधर रह रहा है, बोला क्या हो गया, बोला आपके पिताजी ने घर भेजा, किधर है वो, हमको क्या मालूम। तो बाद में समझा कि पिताजी होटल में रह रहे हैं। पिताजी को बोला आपने ऐसा क्यों किया, बोला कम से कम वेटर लोग आके मेरी सही सेवा करते हैं, जब इस समय में चाहिए खाना मिलता है, मेरा पैसा मैं कैसे भी खर्चा कर सकता हूँ। ये भारतीय संस्कृति होती जा रही है, क्यों, क्योंकि जब कृष्ण को छोड़ दिया तो बहुत सारे असुर लोग वो परिवर्तित हो जाते हैं, घर अपना जंगल बन जाता है। भागवतम के पंचमे स्कंध फिफ्थ कैंटो में है, परिवार के लोग अलग अलग प्रकार के जंगली जानवर बन जाते हैं, क्योंकि वन को आप घर को आपने वन बना दिया, कृष्ण को निकाल दिया। अगर कृष्ण को लेकर आओ तो क्या होगा, घर वृंदावन बन जाएगा, फिर उस वृंदावन में कैसे जानवर रहेंगे, सब प्रेम से रहेंगे। जैसे महाप्रभु आए थे, देखो शेर और हिरण दोनों गले लगा रहे, मोर और सर्प खेल रहे, हाथी खेल रहा है सबके साथ। महाप्रभु ने झापड़ दिया था, कभी भी एक बार झापड़ दिया था किसको, शेर को, प्रेम के कारण, क्यों, क्योंकि कृष्ण आ गए। अगर कृष्ण को निकाल दो फिर आदमी लोग जानवर के समान बन जाएंगे, जानवर को तो छोड़ दो, ये भागवत में लिखा हुआ है, इसलिए इसको हम अवॉइड नहीं कर पाएंगे। भक्ति थोड़ा कष्टदायी होगा, थोड़ा डिफिकल्ट है, जैसे इंग्लिश में कहावत है वर्किंग फॉर कृष्ण रेम्यूनरेशन इज वेरी लेस, भगवान के लिए सेवा करने से तनख्वाह बहुत कम है, बट रिटायरमेंट प्लान इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, समझे ना, रिटायरमेंट क्या है, इज भौतिक, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, यहां से भगवान के धाम में हम जा सकते हैं। हरे कृष्ण। अब सूरत कितना है, त्याचबरोबर उद्या सकाळी बरोबर 7 वाजता श्रीमान गोविंदगुरूंचं श्रीमद भागवत प्रवचन आहे, त्यानंतर भाऊजी मुंबईला जातील, तर आपण त्यांना धन्यवाद देऊ, जसंच नेहमी येत राहू देत त्यांनी आपल्याला प्रसंग देत। हरे कृष्ण, हरी ओ, हरी ओ, हरी ओ, आणि सर्वांसाठी प्रसाद आहे, सर्वांनी प्रसाद घेऊनचा उदयते।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासि गौर भक्त, हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम राम राम। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Thank you.
Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Thank you.